योएल की पुस्तक और लाओदीकियाई सेवंथ डे एडवेंटिस्ट कलीसिया संख्या 44
संख्या 44 सन 854 में सातवें दिन के सप्त के सिद्धांत की मुहर खोली गई और जब बहन व्हाइट ने वाचा के संदूक के भीतर देखा तब उस पर उनके समक्ष विशेष बल दिया गया। उन्होंने ये भी लिखा कि अंतकाल में अवतार के सिद्धांत में भी वही स्वर्ग प्रदत्त विशेष बल निहित था। सातवें दिन का सप्त उस विशेष प्रकाश का प्रतिनिधित्व करता है जो प्रतिरूपात्मक प्रायश्चित्य दिवस के आरंभ होने पर वाचा के संदूक से प्रकट हुआ, और सातवें वर्ष का सप्त उस विशेष प्रकाश का प्रतिनिधित्व करता है जो प्रतिरूपात्मक प्रायश्चित्य दिवस के अपनी समाप्ति पर पहुंचने पर वाचा के संदूक से प्रकट होता है। अवतार का सिद्धांत लायव्य व्यवस्था 23 की अंतिम पवित्र सभा में प्रतिरूपित है। ये सातवें दिन के विश्राम दिन का ओमेगा है जो लायव्य व्यवस्था 23 के आरंभ में पहली पवित्र सभा है। वो प्रथम विश्राम दिन परमेश्वर की सृजनात्मक सामर्थ्य का प्रतिनिधित्व करता है और अंतिम विश्राम दिन उसकी पुनर्सृजनात्मक सामर्थ्य का। वो प्रथम विश्राम दिन संख्या 23 द्वारा निरूपित है और अंतिम संख्या 252 द्वारा। वे दोनों प्रतीक लैव्य व्यवस्था 23 के आरंभ और अंत के सीमा चिन्ह हैं और वे मिलराइट इतिहास के भी आरंभ अंत के सीमा चिन्ह हैं। 1798 में इज़राइल के उत्तरी राज्य के विरुद्ध 2,520 वर्षों की पूर्ति हुई और 2,300 वर्षों की पूर्ति 22 अक्टूबर 1894 में हुई जब बहन व्हाइट को पवित्र स्थान में ले जाया गया और उन्होंने 10 आज्ञाओं का दर्शन किया। तब वे परमेश्वर की अंतिम दिनों की उस प्रजा का प्रतिरूप थीं जो मसीह का अनुसरण करते हुए जब वो अपने प्रायश्चित के कार्य को समाप्त कर रहा होता है अति पवित्र स्थान में प्रवेश करती है। मंदिर की परीक्षा ये है कि जहाँ कहीं वो जाता है मेमने का अनुसरण किया जाए।
ये वे हैं जिन्होंने स्त्रियों के साथ अपने आप को अशुद्ध नहीं किया क्योंकि वे कुआरे हैं। ये वे हैं जो जहाँ कहीं मेमना जाता है उसके पीछे पीछे चलते हैं। ये मनुष्यों में से छुड़ाए गए हैं और ये परमेश्वर और मेमने के लिए प्रथम फल है। प्रकाशित वाक्य 14:4।
भविष्यद्वक्ता के रूप में बहन व्हाइट प्रारंभ में उन विश्वास योग्यों का चित्रण कर रही थीं जो विश्वास के द्वारा महापवित्र स्थान में प्रविष्ट हुए और ऐसा करते हुए वे अंतकाल के उन विश्वास योग्यों का भी आदर्श प्रस्तुत कर रही थीं जो विश्वास से महापवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं और फिर वाचा के संदूक में निहारते हैं। वहां उन्हें जो प्रकाशित होकर दिखाई देता है वो देह धारण का सिद्धांत तथा एट वन मेंट की परिपूर्ति है। वे दो आवरण करने वाले करूबों को देखते हैं जो सृष्टि और पुनर्सृष्टि के दो विश्राम दिनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे संदूक के एक पार्श्व पर 252 और दूसरे पर 23 देखते हैं और ये पहचानते हैं कि सृष्टि और पुनर्सृष्टि के अनुरूप 23 दिव्यता और मानवता के विवाह का प्रतिनिधित्व करता है और 252 मनुष्य के उस रूपांतरण का प्रतीक है जिसमें वो दिव्यता के साथ संयुक्त मनुष्य बन जाता है। प्रायश्चित्त आवरण को हटाया नहीं जाना था, अतः बहन व्हाइट का भीतर देखना एक विशेष प्रगटीकरण था और भविष्य सूचक अर्थ में ये चित्रण उन अंतिम दिनों के लिए उन दिनों की अपेक्षा अधिक है जिनमें वो रहीं। दर्शन द्वारा हम रूपांतरित होते हैं। मंदिर की परीक्षा ये है कि मसीह अपनी कुंवारी प्रजा को चरण दर चरण अपने मंदिर में ले चलता है। भविष्य सूचक अर्थ उस पथ के चरणों का निरूपण करते हैं जो मध्य रात्रि की पुकार के संदेश से चालोकित है। 46 वर्षों का मिलरवादी मंदिर एक चरण है। 23 का मानव मंदिर पुरुष और स्त्री उसने उन्हें सृजा एक चरण है। मसीह का अपने मंदिर को तीन दिनों में उठाना एक चरण है। भंडार गृह मलाकी का मंदिर है। नहेम्याह ने भंडार गृह को तोबिया के अपवित्रीकरण से शुद्ध किया। वही मंदिर था जहां महायाजक हिल्किया ने राजा योशिया के पुनरुद्धार के काल में मूसा की लिखित रचनाएं खोज निकाली। जिस मंदिर को नहेम्याह ने अपवित्रीकरण से शुद्ध किया था वही मंदिर सिस्टर व्हाइट के कथनानुसार मसीह ने उसके धर्म निंदात्मक अपवित्रीकरण से दो बार शुद्ध किया। मिलर के स्वप्न की शव पेटिका एक पायदान थी। जो ही मसीह अपने विश्वास योग्यों को अति पवित्र स्थान में ले आता है वो जिनका प्रतिनिधित्व बहन व्हाइट करती है उन्हें वाचा के संदूक के पास ले जाता है, दया आसन को उठाता है और उन्हें भीतर देखने देता है। जब वे भीतर देखते हैं तो वे देखते हैं कि अवतार का सिद्धांत और सातवें दिन का सप्त दोनों मृदु प्रभा मंडल से आच्छादित हैं। रेखा पर रेखा जो लोग उन सिद्धांतों को पहचानते हैं जो मृदु दीप्ति से आच्छादित हैं, वे विश्वास द्वारा अति पवित्र स्थान में प्रवेश कर संदूक के भीतर देखने वाली बहन व्हाइट के साथ अनुरूप हो जाते हैं। प्राचीन भविष्य वक्ताओं ने जिन दिनों में वे स्वयं जीवित थे उनकी तुलना में अंतिम दिनों के विषय में अधिक विशिष्ट रूप से बोले। जब वही प्राचीन भविष्य वक्ता स्वयं साक्ष्य का भाग बन जाते हैं तब वे अंतिम दिनों में परमेश्वर की प्रजा का प्रतिनिधित्व करते हैं और अंतिम दिनों की परमेश्वर की प्रजा 144,000 है। सिस्टर व्हाइट संभवतः सबसे महत्वपूर्ण प्राचीन भविष्य वक्ता है क्योंकि उनके सभी चित्रण 144,000 के ओमेगा इतिहास का अल्फा इतिहास प्रतिनिधित्व करते हैं। समस्त भविष्य वक्ता अवशिष्ट का निरूपण करते हैं परंतु सिस्टर व्हाइट एक ऐसे आरंभिक इतिहास का भी प्रतिनिधित्व करती हैं जो अंत्य इतिहास में अक्षरशः पूरित होता है। अल्फा के आधारभूत इतिहास में दर्शन में बहन व्हाइट को स्वर्गीय पवित्र स्थान के अति पवित्र स्थान में ले जाया जाता है। वहां पहुंचने पर वाचा के संदूक पर स्थित कृपा आसन जिसे हटाया नहीं जाना था को ऊपर उठाया गया ताकि बहन व्हाइट भीतर देख सके जहां उन्हें 10 आज्ञाएं दिखाई दी।
पवित्रतम स्थान में मैंने एक संदूक देखा। उसके ऊपर और किनारों पर शुद्धतम सोना था। संदूक के प्रत्येक छोर पर एक सुंदर करूप था जिसके पंख उस पर फैले हुए थे। उनके मुख एक दूसरे की ओर थे और वे नीचे की ओर देख रहे थे। स्वर्गदूतों के बीच एक सोने की धूपदानी थी। संदूक के ऊपर जहां स्वर्गदूत खड़े थे अत्यंत उज्ज्वल महिमा थी जो ऐसे प्रतीत होती थी मानो वहां परमेश्वर का सिंहासन हो जहां वो निवास करता है। यीशु संदूक के पास खड़े थे और जब पवित्र जनों की प्रार्थनाएं उनके पास पहुंचती तो धूपदानी की धूप धुआं देने लगती और वे उस धूप के धुएं के साथ उनकी प्रार्थनाएं अपने पिता के सम्मुख चढ़ाते। संदूक में मन्ना का सोने का पात्र, हारून की वो छड़ी जो कोम्प्लित हो गई थी और पत्थर की पट्टिकाएं थीं जो पुस्तक की भांति एक साथ तय हो जाती थीं। यीशु ने उन्हें खोला और मैंने देखा कि उन पर परमेश्वर की उंगली से 10 आज्ञाएं लिखी हुई थीं। एक पट्टिका पर 4 थीं और दूसरी पर 6। पहली पट्टिका की 4 बाकी 6 से अधिक चमक रही थीं, परंतु चौथी सप्त की आज्ञा सबसे बढ़कर चमक रही थी क्योंकि सप्त को परमेश्वर के पवित्र नाम के सम्मान में मानने के लिए अलग ठहराया गया था। पवित्र सप्त अत्यंत महिमामय दिख रहा था। उसके चारों ओर महिमा का आभा मंडल था। मैंने देखा कि सप्त की आज्ञा क्रूस पर कीलों से नहीं ठोकी गई थी। यदि वो ठोकी गई होती तो अन्य 9 आज्ञाएं भी ठोकी गई होती और तब हमें चौथी को तोड़ने की भांति उन सब को तोड़ने की भी स्वतंत्रता तो होती। मैंने देखा कि परमेश्वर ने सप्त को नहीं बदला क्योंकि वो कभी नहीं बदलता, परंतु पोप ने उसे सप्ताह के 7वें दिन से बदलकर पहले दिन कर दिया था क्योंकि उसे समयों और व्यवस्थाओं को बदलना था। प्रारंभिक लेखन 32 फनून। परंतु वर्तमान
7वें दिन के सप्तम सिद्धांत मिलराइट आंदोलन के आधारभूत इतिहास का अल्फा सिद्धांत था। ये इतिहास फिलाडेल्फियाई मिलराइट आंदोलन के रूप में आरंभ हुआ, फिर 1856 में लाओदिकियाई मिलराइट आंदोलन में रूपांतरित हुआ और तत्पश्चात 1863 में लाओदिकियाई 7वें दिन एडवेंटिस्ट कलीसिया में रूपांतरित हो गया। बहन व्हाइट अंत के दिनों के इतिहास में ओमेगा सिद्धांत की भी पहचान करती है। जब 144,000 का लाओदिकियाई आंदोलन 144,000 के फिलाडेल्फियाई आंदोलन में रूपांतरित होता है, अल्फा और ओमेगा की ज्योतियां 7वें दिन के सप्त के सिद्धांत और देह धारण के सिद्धांत द्वारा दर्शाई जाती है।
जो परमेश्वर के साथ संगति रखते हैं वे धर्म के सूर्य के प्रकाश में चलते हैं। वे परमेश्वर के सामने अपनी चाल चलन को भ्रष्ट करके अपने उद्धारकर्ता का अपमान नहीं करते। उन पर स्वर्गीय ज्योति चमकती है। जैसे जैसे ये पृथ्वी का इतिहास अपने अंत के निकट आता है मसीह के विषय में और उससे संबंधित भविष्यवाणियों के विषय में उनका ज्ञान बहुत बढ़ता जाता है। परमेश्वर की दृष्टि में वे अनंत मूल्य के हैं, क्योंकि वे उसके पुत्र के साथ एकता में हैं। उनके लिए परमेश्वर का वचन अतुलनीय रूप से सुंदर और मनोहर है। वे उसकी महत्ता को देखते हैं। सत्य उनके लिए उद्घाटित होता है। देहधारण का सिद्धांत कोमल आभा से आलोकित हो उठता है। वे देखते हैं कि पवित्र शास्त्र वो कुंजी है जो सब भेद खोलती है और सब कठिनाइयों का समाधान करती है। जिन्होंने प्रकाश को ग्रहण करने और प्रकाश में चलने से इनकार किया है, वे भक्ति का भेद समझने में असमर्थ होंगे। परंतु जिन्होंने क्रूस उठाने और यीशु का अनुसरण करने में संकोच नहीं किया, वे परमेश्वर के प्रकाश में प्रकाश देखेंगे। द साउदर्न वॉचमैन, 4 अप्रैल 1905।
अवतार का सिद्धांत को भक्ति का भेद भी कहा जाता है,
और निसंदेह भक्ति का भेद महान है। परमेश्वर देह में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहराया गया, स्वर्ग दूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार किया गया, जगत में उस पर विश्वास किया गया, महिमा में ऊपर उठा लिया गया। 1 तीमुथियुस 3:16।
रहस्य अंतिम पीढ़ी तक गुप्त रहता है। जब विश्वासी जन ये देखते हैं कि देह धारण का सिद्धांत सातवें दिन के सप्त का ओमेगा है,
वो रहस्य भी जो युगों और पीढ़ियों से छिपा रखा गया था, परंतु अब उसके पवित्र जनों पर प्रकट किया गया है, जिन्हें परमेश्वर ने ये जनाट कराना चाहा कि अन्य जातियों में इस रहस्य की महिमा का धन क्या है, अर्थात तुम्हारे भीतर मसीह है जो महिमा की आशा है। कुलुसियों 1:26-27।
ये उचित है कि वही कुलुसियों 1:24 उस भेद की बात करता है जो छिपाया गया था, परंतु वो भेद अंतिम दिनों में प्रकट किया जाता है। जब किसी भविष्यवाणी की मुहर खोली जाती है, तब भविष्यवाणी का प्रकाश प्रकट होता है, जैसा कि दानियल 12 में दर्शाया गया है, जहां 1260 दिनों के अंत में अंत के समय पर एक भविष्यवाणी की मुहर खोली जाती है। पीढ़ियों से छिपी हुई वो भविष्यवाणी की मुहर खोली जाती है, और वही भविष्यवाणी वो सत्य है जो जब खोली जाती है तो वो महिमा है जो रविवार के विधान के समय अन्य जातियों को प्रकट की जाती है। वो भेद मसीह तुम में महिमा की आशा है जो सातवीं तुरही के बजने के दिनों में संपन्न होता है।
परंतु सातवें स्वर्गदूत की आवाज के दिनों में, जब वो तुरही फूंकना आरंभ करेगा, तब परमेश्वर का भेद पूरा हो जाएगा, जैसा कि उसने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को घोषित किया था। प्रकाशित वाक्य 10:7।
जैसा कि प्रकाशित वाक्य 10 में निरूपित है, ये सर्वथा उचित है कि सातवें महीने के 10वें दिन सातवें स्वर्गदूत का स्वर गूंजना आरंभ हुआ। सातवां स्वर्गदूत तीसरे हाय के रूप में भी निरूपित है, और पहले दो हाय इस्लाम थे। इस प्रकार ये इस तथ्य के लिए दो गवाह प्रदान करता है कि तीसरा हाय इस्लाम है। जब इस्लाम का नरसिंगा बज रहा होता है, तब परमेश्वर का भेद पूरा होता है। सातवीं तुरही के इतिहास में अवतार का सिद्धांत, जो मसीही तुम्मे का भेद है, अथवा दिव्यता और मानवता का संयोजन, जैसा कि मसीह ने अपने ऊपर मानवीय देह धारण करके प्रकट किया, के संदर्भ में 1,44,000 में गिने जाने के अभ्यर्थियों की ये परख होगी कि क्या परम पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए उनके पास आवश्यक तेल और विश्वास है। यदि वे हिचकिचाएं तो उन पर अंधकार छा जाता है। यदि वे मेमने का जहाँ जहाँ वो जाता है अनुसरण करें, तो उनका मार्गदर्शन किया जाएगा कि वे वाचा के संदूक में दृष्टि डालें। संदूक में उन्हें सातवें दिन के सप्त का भरा सिद्धांत और अवतार का सिद्धांत मिलेगा। जितने महत्वपूर्ण भी ये दोनों सिद्धांत हैं, मेरा ध्यान अल्फा और ओमेगा की ज्योतियों पर नहीं, बल्कि इस बात पर है कि भविष्यद्वक्त्री ने परमेश्वर की प्रजा को स्वर्गीय पवित्र स्थान में प्रवेश करते हुए और वाचा के संदूक के भीतर दृष्टि डालते हुए दर्शाया। अंतिम दिनों में 1,44,000 के इतिहास में निश्चय ही एक ऐसा बिंदु होना चाहिए जहां 1,44,000 को वाचा के खुले हुए संदूक को निहारने के लिए अति पवित्र स्थान में ले जाया जाता है। यदि आपके पास ये विश्वास है कि भविष्यद्वक्ता अंतिम दिनों में परमेश्वर की प्रजा का निरूपण करते हैं, और साथ ही ये विश्वास भी कि बहन व्हाइट बाइबल के अन्य सभी भविष्यद्वक्ताओं के समान ही हर दृष्टि से दैवीय प्रेरणा प्राप्त थीं, तो मैंने अभी जो अनुप्रयोग प्रस्तुत किया है उसे सत्य मानकर स्वीकार करना होगा। 144,000 के लिए ये आवश्यक है कि वे विश्वास के द्वारा मसीह का अनुसरण करते हुए अति पवित्र स्थान में प्रवेश करें, जैसा कि बहन व्हाइट कहती हैं कि विश्वास योगियों ने 22 अक्टूबर 1844 को किया था। तब दो वर्ग प्रकट हुए। एक, वे जिन्होंने विश्वास के द्वारा प्रवेश करने से इनकार किया, और दूसरे वे जिन्होंने विश्वास के द्वारा प्रवेश किया।
मेरा ध्यान मसीह के प्रथम आगमन की घोषणा की ओर फिर से दिलाया गया। यूहन्ना को एलिया की आत्मा और सामर्थ में यीशु का मार्ग तैयार करने के लिए भेजा गया था। यूहन्ना की गवाही को अस्वीकार करने वालों को यीशु की शिक्षाओं से कोई लाभ नहीं हुआ। उसके आने की भविष्य सूचना देने वाले संदेश के प्रति उनके विरोध ने उन्हें ऐसी स्थिति में ला दिया जहाँ वे ये कि वो मसीहा है इस बात के सबसे सशक्त प्रमाणों को भी आसानी से ग्रहण नहीं कर सके। शैतान ने यूहन्ना के संदेश को अस्वीकार करने वालों को और आगे बढ़ाया कि वे मसीह को भी अस्वीकार करें और उसे क्रूस पर चढ़ाएं। ऐसा करके उन्होंने अपने आप को ऐसी दशा में डाल लिया जहां वे पिंतेकुस्त के दिन मिलने वाली उस आशीष को प्राप्त न कर सके जो उन्हें स्वर्गीय पवित्र स्थान में प्रवेश का मार्ग सिखाती। मंदिर का पर्दा फट जाना ये दिखाता था कि यहूदी बलिदान और नियम विधियां अब स्वीकार नहीं किए जाएंगे। महान बलिदान चढ़ाया जा चुका था और स्वीकार भी कर लिया गया था, और पवित्र आत्मा जो पिंतेकुस्त के दिन उतरा शिष्यों के मनों को प्रतिष्ठित पवित्र स्थान से स्वर्गीय पवित्र स्थान की ओर ले गया जहां यीशु अपने ही लहू के द्वारा प्रवेश कर चुका था ताकि अपने शिष्यों पर अपने प्रायश्चित के लाभ उंडेल दे। परंतु यहूदी पूर्ण अंधकार में छोड़ दिए गए। उद्धार की योजना के विषय में जो प्रकाश उन्हें मिल सकता था वो सब उन्होंने खो दिया, और फिर भी वे अपने निरर्थक बलिदानों और भेंटों पर भरोसा करते रहे। स्वर्गीय पवित्र स्थान ने प्रतिष्ठित की जगह ले ली थी, फिर भी उन्हें इस परिवर्तन का ज्ञान न था, अतः वे पवित्र स्थान में मसीह की मध्यस्थता से लाभान्वित नहीं हो सके। बहुत से लोग इस भय के साथ यहूदियों के मार्ग को देखते हैं कि उन्होंने मसीह को अस्वीकार किया और क्रूस पर चढ़ाया, और जब वे उसके लज्जाजनक दुर्व्यवहार का इतिहास पढ़ते हैं तो वे सोचते हैं कि वे उससे प्रेम करते हैं, और न तो पतरस की तरह उसे नकारते और न ही यहूदियों की तरह उसे क्रूस पर चढ़ाते। परंतु परमेश्वर जो सबके हृदयों को पढ़ता है ने उस प्रेम की परीक्षा ली जो वे यीशु के प्रति अनुभव करने का दावा करते थे। समस्त स्वर ने पहले स्वर्गदूत के संदेश के स्वीकार किए जाने को अत्यंत गहन रुचि से देखा, परंतु बहुतों ने जो यीशु से प्रेम करने का दावा करते थे और जो क्रूस की कहानी पढ़ते समय आंसू बहाते थे उसके आगमन के शुभ समाचार का उपहास किया। संदेश को आनंद के साथ ग्रहण करने के बजाय उन्होंने उसे भ्रम घोषित किया। उन्होंने उन लोगों से घृणा की जो उसके प्रकटन से प्रेम करते थे और उन्हें कलीसियाओं से बाहर कर दिया। जिन्होंने पहले संदेश को अस्वीकार किया वे दूसरे से लाभान्वित नहीं हो सके, और ना ही वे आधी रात की पुकार से लाभान्वित हुए जो उन्हें विश्वास के द्वारा यीशु के साथ स्वर्गीय पवित्र स्थान के अत्यंत पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए तैयार करने वाली थी। और पहले दो संदेशों को अस्वीकार करके उन्होंने अपनी समझ को इतना अंधकारमय कर दिया है कि वे तीसरे स्वर्गदूत के संदेश में कोई प्रकाश नहीं देख सकते जो अत्यंत पवित्र स्थान में जाने का मार्ग दिखाता है। मैंने देखा कि जैसे यहूदियों ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया वैसे ही नामधारी कलीसियाओं ने इन संदेशों को क्रूस पर चढ़ाया है, इसलिए उन्हें अत्यंत पवित्र स्थान में जाने के मार्ग का कोई ज्ञान नहीं है और वे वहां यीशु की मध्यस्थता से लाभान्वित नहीं हो सकते। यहूदियों के समान जो अपने निष्फल बलिदान चढ़ाते थे वे उस कक्ष की ओर अपनी निष्फल प्रार्थनाएं चढ़ाते हैं जिसे यीशु छोड़ चुका है, और शैतान इस धोखे से प्रसन्न होकर धार्मिक रूप धारण करता है और इन कथित मसीहियों के मनों को अपनी ओर ले जाता है अपनी शक्ति अपने चिन्हों और झूठे चमत्कारों के साथ काम करते हुए ताकि उन्हें अपने फंदे में जकड़ दे। प्रारंभिक लेखन 200 पन्ना देखते 6:1।
बहन व्हाइट योहन बपतिस्मा देने वाले और मसीहा इन दोनों के इतिहास में निहित उस प्रगतिशील परीक्षात्मक प्रक्रिया की पहचान करती हैं जो यहूदियों के पूर्णतः अंधकार में पड़ जाने पर समाप्त हुई थी, ताकि उसी इतिहास में वो मिलेराइटों के युग में निरूपित कर सके जो अंतिम दिनों की प्राचीन भविष्यवक्त्री बहन व्हाइट का अल्फा इतिहास है। आरंभ में जीवन मृत्यु की परीक्षा इसी विषय पर थी कि परम पवित्र स्थान में प्रवेश किया जाए या ऐसा करने से इनकार किया जाए। ऐसा करने से इनकार करने पर मिलेराइट इतिहास के विद्रोहियों पर वही अंधकार छा गया जो मसीह के इतिहास में विद्रोही यहूदियों पर आया था। यीशु सदा किसी बात के अंत को उसकी शुरुआत के द्वारा दर्शाते हैं। अतः जब बहन व्हाइट को परम पवित्र स्थान में ले जाया गया और उन्होंने वहां खुले वाचा के संदूक को निहारा 22 अक्टूबर 1844 की परीक्षा के संबंध में, तो ये दर्शाता है कि 144,000 की परीक्षा इस पर होगी कि वे मेमने का अनुसरण करते हुए परम पवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं या पूर्ण शाश्वत अंधकार में चले जाते हैं। ये तथ्य उस विश्वास पर आधारित है कि जब प्राचीन भविष्यद्वक्ता स्वयं लिपिबद्ध साक्ष्य का अंग बनते हैं तो वे परमेश्वर की उत्तरकालीन प्रजा का निरूपण करते हैं। बहन व्हाइट दोनों वर्गों का निरूपण करती हैं।
इस निराशा की अवस्था में मुझे एक स्वप्न आया जिसने मेरे मन पर गहरी छाप छोड़ दी। मैंने एक मंदिर देखा जिसकी ओर बहुत से लोग उमड़ते आ रहे थे। जब समय का अंत होगा तो केवल वे ही बचाए जाएंगे जो उस मंदिर में शरण लेते हैं। जो बाहर रह गए वे सदा के लिए खो जाएंगे। बाहर की भीड़ जो अपनी अपनी राह में लगी थी मंदिर में प्रवेश करने वालों का उपहास करती और ठट्ठा उड़ाती और उन्हें कहती कि सुरक्षा की ये योजना एक चालाक छल है, वास्तव में बचने जैसा कोई खतरा है ही नहीं। वे तो कुछ लोगों को पकड़ भी लेते थे ताकि उन्हें दीवारों के भीतर हड़बड़ी में प्रवेश करने से रोक दें। उपहास का पात्र बनने के भय से मुझे यही उचित लगा कि भीड़ के छंट जाने तक प्रतीक्षा करूं या जब तक मैं उनकी नज़र से बचकर भीतर प्रवेश कर सकूं। पर घटने के बजाय लोगों की संख्या बढ़ती ही गई और देर हो जाने के डर से मैं जल्दबाजी में घर से निकल पड़ा और भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ा। मंदिर तक पहुँचने की व्यग्रता में मैंने अपने चारों ओर उमड़ी भीड़ पर न ध्यान दिया न परवाह की। भवन में प्रवेश करते ही मैंने देखा कि विशाल मंदिर एक ही विशाल स्तंभ पर टिका हुआ था और उसी से एक मेमना बांधा गया था जो पूरी तरह क्षत विक्षत और लहूलुहान था। वहां उपस्थित हम सबको ऐसा प्रतीत होता था कि ये मेमना हमारे कारण ही फाड़ा और कुचला गया था। जो भी मंदिर में प्रवेश करता उसे उस मेमने के सामने आकर अपने पाप स्वीकार करने होते। मेमने के ठीक सामने कुछ ऊंचे आसन थे जिन पर एक बहुत प्रसन्न दिखने वाला समूह बैठा था। उनके चेहरों पर स्वर्ग का प्रकाश चमकता हुआ लगता था और वे परमेश्वर की स्तुति करते हुए आनंदमय कृतज्ञता के गीत गाते थे जो स्वर्गदूतों के संगीत जैसे प्रतीत होते थे। ये वही लोग थे जो मेमने के सामने आए, अपने पापों को स्वीकार किया, क्षमा प्राप्त की और अब किसी आनंदमय घटना की प्रसन्न आशा में प्रतीक्षा कर रहे थे। भवन में प्रवेश कर लेने के बाद भी मुझ पर भय छा गया और ऐसी लज्जा का बोध हुआ कि मुझे इन लोगों के सामने अपने आप को दीन करना पड़ेगा। परंतु मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मैं आगे बढ़ने को विवश हूँ और मेमने का सामना करने के लिए स्तंभ का चक्कर काटते हुए मैं धीरे धीरे बढ़ रहा था। तभी तुरही बजी, मंदिर कांप उठा, एकत्रित पवित्र जनों की जय ध्वनियाँ उठीं। एक भयावह दीप्ति ने भवन को आलोकित कर दिया और तत्पश्चात सर्वत्र घोर अंधकार छा गया। वे आनंदित लोग उस दीप्ति के साथ सबके सब विलीन हो गए और मैं रात के मौन आतंक में अकेला रह गया। मैं मनः क्लेश में जाग उठा और अपने आप को ये समझा पाना कठिन था कि ये सब स्वप्न था। मुझे प्रतीत हुआ कि मेरा विनाश निश्चित हो चुका है, कि प्रभु का आत्मा मुझे छोड़कर चला गया है जो कभी लौटेगा नहीं। इसके थोड़े ही समय बाद मुझे एक और स्वप्न आया। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मैं घोर निराशा में मुख दोनों हाथों में छिपाए इस प्रकार विचार कर रहा था, यदि यीशु पृथ्वी पर होते तो मैं उनके पास जाता, उनके चरणों में गिर पड़ता और अपने समस्त दुख कष्ट उन्हें कह सुनाता। वे मुझसे मुंह न मोड़ते, वे मुझ पर दया करते और मैं सदा उनसे प्रेम करता और उनकी सेवा करता। इतने में द्वार खुला और मनोहर काया तथा सुंदर मुखमंडल वाला एक व्यक्ति भीतर प्रविष्ट हुआ। उसने मुझ पर करुणा भरी दृष्टि डालकर कहा, क्या तुम यीशु को देखना चाहते हो? वे यहीं हैं और यदि तुम चाहो तो उन्हें देख सकते हो। जो कुछ तुम्हारे पास है उसे साथ लेकर मेरे पीछे आओ। मैंने ये बात अवर्णनीय आनंद से सुनी और प्रसन्नतापूर्वक अपनी सारी छोटी छोटी संपत्तियां, प्रत्येक प्रिय स्मृति चिन्ह समेट कर अपने मार्गदर्शक का अनुसरण किया। वो मुझे एक खड़ी और प्रतीतता नाजुक सी सीढ़ी तक ले गया। जैसे ही मैंने सीढ़ियां चढ़ना आरंभ किया, उसने मुझे चेताया कि मैं अपनी दृष्टि ऊपर ही स्थिर रखूं, कहीं ऐसा न हो कि मुझे चक्कर आ जाए और मैं गिर पड़ूं। अनेकों अन्य जो उस खड़ी चढ़ाई पर चढ़ रहे थे शिखर तक पहुंचने से पहले ही गिर पड़े।
अंततः हम अंतिम सीढ़ी पर पहुंचे और एक द्वार के सामने खड़े हो गए। यहाँ मेरे मार्गदर्शक ने मुझे ये निर्देश दिया कि जो कुछ मैं अपने साथ लाया था उसे सब यहीं छोड़ दूं। मैंने प्रसन्नतापूर्वक उन्हें नीचे रख दिया। तब उसने द्वार खोला और मुझे भीतर प्रवेश करने को कहा। क्षण भर में मैं यीशु के सम्मुख खड़ा था। उस सुंदर मुखमंडल के विषय में भ्रम की कोई संभावना न थी। औदार्य और महिमा की वो अभिव्यक्ति किसी और की हो ही नहीं सकती थी। जैसे ही उनकी दृष्टि मुझ पर ठहरी, मुझे तक्षण ज्ञात हो गया कि वे मेरे जीवन की प्रत्येक परिस्थिति से तथा मेरे समस्त अंतरंग विचारों और भावनाओं से भलीभांति परिचित हैं।
मैंने उनकी दृष्टि से अपने को बचाने का प्रयत्न किया। मुझे लगा कि उनके अन्वेषी नेत्रों का सामना करना मेरे लिए असह्य है, परंतु वे मुस्कान के साथ समीप आए और अपना हाथ मेरे मस्तक पर रखकर बोले, भय न कर। उनकी मधुर वाणी के स्वर ने मेरे हृदय को ऐसे आनंद से रोमांचित कर दिया जैसा उसने पहले कभी अनुभव न किया था। मैं इतनी आनंदित था कि एक शब्द भी न बोल सका, परंतु भावावेश से अभिभूत होकर उनके चरणों में दंडवत गिर पड़ा। जब मैं वहां निरुपाय पड़ा था, तब सौंदर्य और महिमा के दृश्य मेरे सम्मुख से होकर गुजरे और मुझे प्रतीत हुआ कि मैं स्वर्ग की सुरक्षा और शांति तक पहुंच गया हूँ। अंततः मेरी शक्ति लौट आई और मैं उठ खड़ा हुआ। यीशु के प्रेम में नेत्र अब भी मुझ पर टिके थे और उनकी मुस्कान ने मेरी आत्मा को आनंद से भर दिया। उनकी उपस्थिति ने मुझे पवित्र श्रद्धा और अकथनीय प्रेम से परिपूर्ण कर दिया।
अब मेरे मार्गदर्शक ने द्वार खोला और हम दोनों बाहर निकल गए। उसने मुझे आज्ञा दी कि मैं वे समस्त वस्तुएं फिर से उठा लूं जिन्हें मैं बाहर छोड़ आया था। ये कर लेने पर उसने मुझे कसकर लपेटी हुई एक हरी रज्जू थमा दी। उसने निर्देश दिया कि मैं इसे अपने हृदय के समीप रखूं और जब मैं यीशु को देखना चाहूं तो इसे अपने वक्ष से निकालकर यथासंभव तान दूं। उसने मुझे सावधान किया कि इसे अधिक समय तक लिपटा हुआ न रहने दो, कहीं ऐसा न हो कि इसमें गांठें पड़ जाएं और इसे सीधा करना कठिन हो जाए। मैंने उस रज्जू को अपने हृदय के निकट रख लिया और प्रभु की स्तुति करता हुआ तथा जिन जिन से भेंट हुई उन्हें ये बताते हुए कि वे यीशु को कहाँ पा सकते हैं, आनंदपूर्वक संकरी सीढ़ियों से नीचे उतरा। इस स्वप्न ने मुझे आशा प्रदान की। मेरे मन में वो हरी रज्जू विश्वास का प्रतीक थी और परमेश्वर पर भरोसा करने का सौंदर्य और सरलता मेरी आत्मा पर उदय होने लगी। टेस्टिमोनीज खंड 1 27-29।
70 अगस्त को एक्सिटर कैंप मीटिंग के समापन से लेकर 22 अक्टूबर 1844 तक का अंतराल 66 दिनों का था। वे 66 दिन मध्यरात्रि की पुकार के प्रचार की अवधि का प्रतिनिधित्व करते हैं और 10 कुवारियों के दृष्टांत के संदर्भ में तब जिन्होंने उस संदेश का प्रचार किया वे तेल रखने वालों का प्रतिनिधित्व करते हैं और जिन्होंने तब उस संदेश का प्रचार किया उनके पास तेल नहीं था। दृष्टांत में विवाह विलंब काल के आरंभ में संपन्न हुआ। वैधानिक विवाह संपन्न हुआ और तब सब लोग घर लौट गए तथा प्रतीक्षा करते रहे जब तक वर पिता ये निर्णय न कर ले कि विवाह का परिपूर्णन करना स्वीकार्य है या नहीं। प्रथम विवाह और मध्यरात्रि में होने वाले द्वितीय समारोह के बीच की गई बेवफाई को व्यभिचार माना जाता था। विलंब काल का आधार ये था कि वर पिता कुछ समय तक प्रतीक्षा करता था ताकि वो देख सके कि उस अवधि में वधू के साथ क्या घटित होता है, क्या वो गर्भवती थी। जब पिता ने ठहराया कि सब कुछ ठीक है तो मध्यरात्रि की विवाह यात्रा आरंभ हुई और ये रात में इसलिए आरंभ होती थी कि फिलिस्तीन के दिन की झुलसा देने वाली गर्मी से बचा जा सके। इसी कारण वधू की सहचर्या अर्थात दृष्टांत की कुआरी कन्याएं से अपेक्षा थी कि वे अपने अपने दीपक और तेल का भंडार साथ रखे उस मध्यरात्रि की पुकार की प्रतीक्षा में जो ये उद्घोष करती थी कि विवाह यात्रा आरंभ हो चुकी है क्योंकि वो रात में ही संपन्न होने वाली थी। एक्सेटर में वो मध्यरात्रि की पुकार आ पहुंची और या तो आपके पास विवाह यात्रा के लिए पर्याप्त तेल तैयार था या नहीं था। जब वे संदेश लेकर एक सेटर से निकले तब वे उस मुहर बंड प्रजा का चित्रण कर रहे थे। कुछ के पास 22 अक्टूबर 1844 को विवाह में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त तेल था और कुछ के पास नहीं था। वे 66 दिन उस काल का प्रतीक है जब रविवार के कानून का द्वार बंद होने तक परमेश्वर की प्रजा पर मुहर लगती है। यदि उनके पास उचित मात्रा में तेल था तो वे विश्वास के द्वारा परम पवित्र स्थान में प्रविष्ट हुए। बहन व्हाइट ने अंतिम दिनों में परमेश्वर की प्रजा के परम पवित्र स्थान में प्रवेश करने का चित्रण किया और उनके अल्फा इतिहास में विश्वास के द्वारा परम पवित्र स्थान में प्रवेश करना जीवन मरण की परीक्षा था। अंतिम दिनों में 144,000 की ये परीक्षा ली जाएगी कि क्या वे विश्वास से परम पवित्र स्थान में प्रवेश करेंगे। ये फिर से जीवन मरण की परीक्षा है। हम इन बातों को अगले लेख में जारी रखेंगे।
मंदिर के शुद्धिकरण में यीशु मसीहा के रूप में अपने दायित्वों की घोषणा कर रहे थे और अपने कार्य में प्रविष्ट हो रहे थे। वो मंदिर जो दैवी उपस्थिति के निवास के लिए निर्मित किया गया था, इज़राइल और संसार के लिए एक प्रत्यक्ष शिक्षा पाठ ठहराया गया था। अनादि काल से परमेश्वर की ये योजना रही कि प्रत्येक सृपाठनी उज्ज्वल और पवित्र सेराफ से लेकर मनुष्य तक सृष्टिकर्ता के निवास के लिए एक मंदिर हो। पाप के कारण मनुष्य जाति परमेश्वर का मंदिर न रही, बुराई से अंधकारमय और मलिन होकर मनुष्य का हृदय अब परमेश्वर की महिमा प्रकट न करता था, परंतु परमेश्वर के पुत्र के देह धारण द्वारा स्वर का उद्देश्य परिपूर्ण होता है। परमेश्वर मनुष्यता में निवास करता है और उद्धारकारी अनुग्रह के द्वारा मनुष्य का हृदय फिर से उसका मंदिर बन जाता है। परमेश्वर की योजना थी कि यरूशलेम का मंदिर प्रत्येक आत्मा के लिए उपलब्ध उच्च नियति का सतत साक्षी बना रहे, परंतु यहूदी उस भवन के महत्व को समझ न सके जिस पर वे इतना गर्व करते थे। उन्होंने अपने को दैवी आत्मा के लिए पवित्र मंदिरों के रूप में समर्पित नहीं किया। यरूशलेम के मंदिर के प्रांगण अपवित्र वाणिज्य के कोलाहल से भरे हुए अत्यंत यथार्थ रूप से हृदय के उस मंदिर का प्रतिनिधित्व करते थे जो इंद्रिय वासना और अपवित्र विचारों की उपस्थिति से मलिन था। जब यीशु ने मंदिर को संसार के खरीदारों और विक्रेताओं से शुद्ध किया तब उन्होंने यह घोषित किया कि उनका उद्देश्य हृदय को पाप की अशुद्धि से, सांसारिक इच्छाओं, स्वार्थी वासनाओं और बुरी आदतों से जो आत्मा को भ्रष्ट करती हैं, शुद्ध करना है। मलाकी 3:1-3 उद्धृत, द डिजायर ऑफ एजेस 16-, भविष्यद्वक्ता कहता है, मैंने एक और स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा जिसके पास बड़ा अधिकार था, और पृथ्वी उसकी महिमा से प्रकाशित हो गई, और वो बड़े बल के साथ ऊंचे शब्द में पुकार कर कहने लगा कि बड़ा बाबुल गिर गया और दुष्टात्माओं का निवास स्थान बन गया है। रेवलेशन 18:1-10, यही वही संदेश है जो दूसरे स्वर्गदूत द्वारा दिया गया था। बाबुल गिर गया है क्योंकि उसने सब जातियों को अपने व्यभिचार के प्रकोप की दाख मधु पिलाई है। रेवलेशन 14:10, वो दाख मधु क्या है? उसके मिथ्या सिद्धांत। उसने चौथी आज्ञा के सप्त के स्थान पर संसार को एक झूठा विश्राम दिन दिया है और उस असत्य को भी दोहराया है जो शैतान ने सबसे पहले अदन में हव्वा से कहा था, आत्मा की स्वाभाविक अमरता। इस प्रकार की अनेक संबंधित भ्रांतियां उसने दूर दूर तक फैला दी हैं और मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाती है। मैथ्यू 15:9। जब यीशु ने अपनी सार्वजनिक सेवा आरंभ की तब उन्होंने मंदिर को उसके अपवित्र अपमान से शुद्ध किया। उनकी सेवा के अंतिम कार्यों में मंदिर का दूसरा शुद्धकरण भी सम्मिलित था। इसी प्रकार संसार को चेतावनी देने के अंतिम कार्य में कलीसियाओं के लिए दो पृथक आह्वान किए जाते हैं। दूसरे स्वर्गदूत का संदेश ये है, गिर पड़ा बड़ा बाबुल, क्योंकि उसने अपने व्यभिचार के क्रोध की दाख मधु सब जातियों को पिलाई है। प्रकाशित वाक्य 14:8। और तीसरे स्वर्गदूत के संदेश के प्रबल पुकार में स्वर्ग से ये वाणी सुनाई देती है, हे मेरी प्रजा, उसमें से निकल आओ ताकि तुम उसके पापों में भागी ना हो और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर ना आ पड़े, क्योंकि उसके पाप स्वर्ग तक पहुँच गए हैं और परमेश्वर ने उसके अधर्मों को स्मरण किया है। प्रकाशित वाक्य 1800:5। सिलेक्टेड मैसेजेस बुक 2 118।